ओम शांति। क्या सुना गीत में? घर आज हमारा बस जो चले तो क्या कर देंगे, हम रोक देंगे दिन ये सुहाने। तो कौन से दिन सुहाने हैं? संगम युग के दिन सुहाने हैं, वो आने वाले या आने वाले दिन सुहाने हैं? क्यों? स्वयं भगवान है यहाँ पर, इसलिए। किसको देख रहे हैं बाबा आज? बेगमपुर के बादशाहों को देख रहे हैं। संगम युग क्या है? बेगमपुर है। संगम युग क्या है? संगम युग क्या है? मौजों का युग है। संगम युग क्या है? खुशियों का युग, मौजों का युग, मनोरंजन का युग, मधुर युग, बधाइयों का युग, हंसने का युग, कमाई का युग, जमा का खाता बढ़ाने का युग, और धर्माओ युग, लीप युग, छोटा युग, सृष्टि चक्र का आदिकाल की अंतिम काल, अंतिम काल, और होली युग, और चढ़ती कला का युग, प्रभु मिलन का गुप्त युग। कोर्स की किताब में क्या नाम दिया है हमारे युग को, इस युग को? प्रभु मिलन का गुप्त युग व पुरुषोत्तम संगम युग। और कौन सा युग है? परमात्मा मिलन मनाने का युग, ब्राह्मणों का युग, और कौड़ी से हीरे तुल्य बनने का युग, मनुष्यों से देवता बनने का युग, रंग से राजा बनने का युग, नर से नारायण बनने का युग, लक्ष्मी से नारी से लक्ष्मी बनने का युग, और लीप युग, जीते जी मरने का युग। और कौन सा युग है? कौड़ी से हीरे हो गया, कर्मेंद्रिय जीत बनने का युग, खुदा को दोस्त बनाने का युग, परमात्मा को अपने प्यार में बांधने का युग है ये, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का युग है। और किसी युग में अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता, यही वो समय है। देवताओं के पास अतीन्द्रिय सुख नहीं है, देवताओं के पास फिर भी भौतिक सुख है, ये पराभौतिक सुखों का युग है, अपार्थिव सुखों का युग। और क्या है संगम युग? ताकत भरने का युग, शक्तियां भरने का युग, संपन्न बनने का युग, संपूर्ण बनने का युग, कर्मातीत बनने का युग, घर जाने का युग, आत्माओं को परमात्मा संदेश देने का युग, आत्माओं को प्रभु से मिलाने का युग, दुखों से मुक्त करने का युग, पीड़ा दर्द से निजात दिलाने का युग, जीरो से हीरो बनने का युग है ये, घर जाने का युग, स्वीट युग, कुंभ मेला है ये, सागर और नदियों का मिलन यहां हो रहा है, सर्वोत्तम युग, श्रेष्ठ युग, परमात्मा से रूरियान करने का युग, परमात्मा को देखते हुए आत्माओं से रूरियान करते हुए, देखा है तुमको बाबा, गीत है ना, क्या रूहों से प्यार करते हुए, परमात्मा को अपने कर्तव्य करते हुए देखने का युग, सृष्टि पर उसका आना, परमात्मा को दृष्टि देते हुए देखने का युग, परमात्मा को आत्माओं से मिलते हुए देखने का युग, परमात्मा को टोली खिलाते हुए देखने का युग, मोस्ट वैल्यूएबल, और भक्ति से वैराग्य प्राप्त करने का युग, राज राजेश्वर बनने का युग, बाप की गोदी में खेलने का युग, परमात्मा को मात पिता बनाने का युग, सर्व संबंध का रस प्राप्त करने का युग। तो ऐसा बाबा ने कहा संगम युग है बेगमपुर का युग। इस युग में कौन बैठे हैं? बेगमपुर के बादशाह बैठे हुए हैं। इस बादशाही के आगे वो बादशाही कैसी है? गीत में सुना ना, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका वो तख्त फीका, घर तू हमारा सब कुछ हमारा, बदले में तेरे कुछ और ना लू, हम हैं तुम्हारे और तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे। यहां की प्राप्तियों की खुशी और नशे के आगे, यहां की प्राप्ति और खुशी उधर से कैसी है? पदम गुना श्रेष्ठ है। यहां जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ पाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो अनमिला है। कुछ है अनमिला कि सब कुछ मिल गया? यही की बात चल रही है, सब कुछ मिल गया है। यह अनुभूति, आत्मा तृप्त हो जाती है, यहां पर संतुष्ट हो जाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है, शांत हो जाती है। स्वस्वरूप में स्थित होने का भी युग है ये। ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय औलाद, यहां हम बनते हैं। हाँ, त्रिनेत्र यहां ही बनते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाने का युग। विकर्म भी यहीं पे विनाश कर सकते हो, और कोई समय नहीं है विकर्म विनाश करने का। बाकी तो समय विकर्म होते रहते हैं द्वापर से। सुकर्म करने का युग है ये। अभी वो तो अकर्म था, फिर बाद में विकर्म और अभी सुकर्म। यहां से ये टॉप पॉइंट है, बाबा ने कहा है संगम युग है टॉप पॉइंट। संगम युग पर बैठो और देखो कैसे चक्कर लगाया, अपने ही 84 जन्म को याद करो, बार बार बाबा ने कहा है मुरलियों में। तो बाप दादा आज किसको देख रहे हैं? संगम युग के बेगमपुर के बादशाहों को देख रहे। ऐसी बादशाही जिनके पास है, जिसके सामने वो बादशाही तो फीकी है, बेमजा, बेस्वाद। ऐसी श्रेष्ठतम ये बादशाही है, और देने वाला कौन है? उसका नशा। तो यहां की प्राप्तियों का नशा और खुशी वहां से पदम गुना श्रेष्ठ है। इसे निरंतर याद रखो। बाबा ने कहा था उस दिन क्या देखा? उस दिन देखा ना सतयुग की बादशाही कितनी अच्छी थी, बहुत सारी पॉइंट्स गिनाए थे, और आज वो सारी पॉइंट्स फीकी पड़ गई। कौन कौन सी पॉइंट्स है? मीठा फल खाने की पॉइंट। मीठा फल, मीठे फल तो उधर होंगे, इधर क्या है? सर्व संबंधों का रस। किससे? वृक्षपति से। वहां पर कौन से फल खाएंगे? वृक्ष के फल, सतो प्रधान, अति स्वादिष्ट, रस वाले, उधर खाएंगे। और इधर प्रत्यक्ष फल खाते हो, इधर सर्व संबंधों के रस का फल। प्रत्यक्ष फल कौन सा है? प्रत्यक्ष फल तारा माता, कौन से प्रत्यक्ष फल है? 12 सीजन के 12 फल, कौन से फल? हाँ वो तो आज बोला। और कौन से फल है? एक ही फल नहीं है, बहुत फल है। खुशी, अतीन्द्रिय सुख, नशा। सेवा करने के बाद क्या प्राप्त होता है? तुरंत प्रत्यक्ष, अर्जेंट, ताबड़तोब वहां के वहां क्या मिलता है? खुशी, नशा, दुआएं और संतुष्टता। ये सब संगम युग के प्रत्यक्ष फल है, तुरंत मिलता है। नो उधारी सिस्टम, अभी अभी किया और अभी अभी प्राप्त। और क्या मिलता है? ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, बल और उमंग, उत्साह बढ़ जाता है। एक बार सेवा करो तो और सेवा करने की इच्छा होती है। सफलता, सफलता भी प्रत्यक्ष फल है। और त्याग का प्रथम गुना फल मिलता है। वही कौन कौन से फल है? व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं सेवा करते करते। जितना जो स्वयं को बिजी रखते हैं उतना वो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, जितना हम खाली है उतना ही व्यर्थ आने की मार्जिन बढ़ जाती है। तो ये सारे और भी बहुत है, पर बाबा ने आज तो गिनाया कौन सा, सर्व संबंधों के रस का फल और प्रत्यक्ष फल, श्रेष्ठ फल ये यहाँ ये वृक्षपति के द्वारा मिल रहा है और वहां पर वृक्षों के द्वारा मिल रहा है। और अमृत वेले से चालू करो जैसे बाबा ने चालू किया। उठते ही क्या हो जाता है, कौन उठाता है पहले? तो प्रकृतिपति, प्रकृति का मालिक, और उधर प्रकृति उठाती है। यहां उठते ही क्या हो जाता है, सीधा परमात्मा मिलन। उधर परमात्मा मिलन नहीं होता है, यहां उठते ही क्या करते हो, बाप से गुड मॉर्निंग तो तुम भी करते हो पर बाबा तुमसे गुड मॉर्निंग करता है। तुम करो या ना करो, दो तीन साल पहले मुरली चली थी ना, पर बाप तो करता ही है। तो उठते ही परमात्मा मिलन हो जाता है, उठते ही अतीन्द्रिय सुख से आत्मा भर जाती है, उठते ही उसके उपकारों की याद से आत्मा भर जाती है, उठते ही अमृत वेला विश्व की आत्माओं को सकाश देने का युग समय है। सतयुग में सकाश की कोई बात नहीं, सतयुग में सेवा का सब्जेक्ट नहीं है, वो यहाँ है। उठाता कौन है तो प्रकृति पति। सांस कौन सा है उधर और इधर? उधर कौन से साज है? पंछियों के, पक्षियों के साज है। और यहाँ कौन कौन से साज है? बच्चे, मीठे बच्चे। और बाबा का फेवरेट गीत है ऑल टाइम, एक ही तो गीत है बाबा का, वाह बच्चे वाह, ये बाबा का सबसे फेवरेट गीत है, ओनली वन ऑल टाइम फेवरेट। बाबा का एक ही गीत सबसे ज्यादा फेवरेट है। और कौन से साज सुनाता है वो? रोज की मुरली में कौन कौन से साज आते हैं? चिकिलदे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे रतन बच्चे, और मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ये साजी तो है जो रोज और नमस्ते, स्वयं भगवान आकर नमस्ते करता है। तो ये भी तो साज है, मीठे साज, नैसर्गिक साज, प्राकृतिक साज, मधुर साज, ईश्वरीय साज बोला आज बाबा ने उसमें, ऐसे साज यहां बाप सुनाते हैं। आगे किस गदेले पे वहां सोते हो और यहाँ, वहां गदेले पर सोते हो और यहाँ याद के गदेले पर सोते हो, बाबा की गोद के गदेले पर सोते हो। और दास दासियों से पालना और यहाँ भगवान के हाथों से पालना, माँ बाप उधर बिजी रहते हैं थोड़ा कारोबार में, सतयुग में राज कारोबार भी देखना होता है ना, और वहां कितने नेत्र है और यहाँ कितने नेत्र है, वहां दो और यहाँ त्रिनेत्री, वहां कितने लोगों का सैर करते हो, एक, और यहाँ त्रिलोक का सैर करते हो। वहां पर किस लोक में चले जाते हो? निद्रा लोक, निंद्रा लोक में चले जाते हो, और यहाँ बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाते हो। और खिलौना कौन सा मिला है तुमको यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा खिलौना मिला है? चौथा है बाप, खिलौना रूप में तुम्हें प्राप्त हुआ है। कैसा खिलौना है ये? न टूटता है न फूटता है, अविनाशी है, खर्चा भी नहीं है। उधर किसके साथ खेलोगे? रत्नों के साथ खेलोगे, साथियों के साथ खेलोगे, और उधर सतयुग में नहीं, सतयुग में किसके साथ खेलोगे? आपस में खेलोगे। यहाँ किसके साथ खेलोगे? बाप के साथ खेलोगे, ज्ञान रत्नों के साथ तुम खेलते हो, और किसके साथ? पंजाब ग्रुप ने पंजाब या माया के साथ भी कहा ना, पंजाब माया के साथ खेलते हो, माया नहीं पंजाब नहीं, हमें ये लंदन, लंदन से कहा ना बाबा ने, पवित्रता का ताज माया उड़ा तो नहीं देती है, खेलते किसके साथ हो तुम? माया के साथ खेलते, माया खिलौना रूप है जैसे तुम्हारे यहाँ। तो ये संगम युग के खिलौने हैं। कैसा खिलौना है ये? जो संबंध चाहो। बच्चा बनाना है तो बच्चा बनाओ, बच्चा बनना है तो बच्चा बनो। तू मात पिता साजन सखा, गीत सुना ना, तू मात पिता बन साजन सखा बन। वो प्यार लूटा था कौन सा? दुनिया से न्यारा। सर्व संबंध निभाने के लिए वो पंधा है इस समय। तो सर्व संबंध ऐसा ये खिलौना आपको प्राप्त है। और क्या है उधर और इधर? 36 प्रकार का भोजन, वैरायटी भोजन उधर, और इधर या ब्रह्मा भोजन। यहां तुम किसको खिलाते हो? तुमको कौन खिलाता है? तुम खिलाते भी उसको और वो तुमको भी खिलाता है। किसकी याद में खाते हो? वहां तो किसके साथ खाते हो? महान आत्माओं के साथ। और यहां महानतम सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के हाथ का बना हुआ और उनके साथ ब्रह्मा भोजन। फिर वहां पर सही कौन सा रियल विमान है? वो त्रिलोक की सैर करते हो। वहां पर कौन सा झूला है और इधर कौन सा झूला है? यहाँ पर परमात्मा प्यार का झूला, याद का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशी का झूला, और उधर रत्न जड़ित झूला। रत्न जड़ित झूले पर झूलते हो। कौन झूलाता है उधर? दादासी है। और इधर कौन झूलाता है? इधर माया भी झूलाती है बीच बीच में। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और पावरफुल बनते हो यहाँ, और वहां रॉयल बुद्धू। भले दुनिया के हिसाब से माननीय है, पूजनीय है विश्व के आगे, परंतु ज्ञान के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से अंतर पड़ जाता है, बाबा ने कहा। और वहां विश्व के मालिक है और यहां विश्व का मालिक। विश्व का मालिक क्या? नहीं नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। वहां हम विश्व के मालिक है और जो विश्व का मालिक है उसके हम मालिक यहां है। वहां पर राज्य करता है, राज्य अधिकारी है, और यहां विश्व राज्य, यहां पर विश्व कल्याणकारी या कहो स्वराज्य अधिकारी, महादानी, वरदानी, और उधर और इधर। यहां ये इधर और उधर यही सोच सकते हैं बस, वहां ये सोच भी नहीं सकते कि इधर और उधर क्या है, ये सोचना भी यही है। यहां वहां बुद्धू है, तो इधर और उधर सोचना भी यहीं पर है। और क्या? वहां गोल्डन एज का फल और यहां डायमंड एज का फल, और यहां हीरे जैसा जीवन है। और क्या फर्क है? और भी बहुत है कि हो गया? वहां यहां सुकर्म है, वहां अकर्म है, यहां योग है, वहां योग नहीं है। यहां पर चढ़ती कला है, वहां पर उतरती कला है। और यहां पर साक्षात्कार भी होते हैं आत्माओं को, वहां साक्षात्कार नहीं होता। किस किस को? और वहां महान आत्माएं मात पिता है, यहां भगवान मात पिता है, या सर्व संबंधी है। वहां भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव करने का योग है। वहां कोई अनुभव नहीं है, वहां से बिछड़ना शुरू होता है। यहाँ बिछड़े हुए मिलते हैं, इसके लिए सिकिल दे कहा है उनको। और वहां पर एक राज्य है या अनेक राज्य है, वहां एक भाषा है, और यहाँ भाषाएं कितनी है? कितनी सारी भाषाएं है। वहां पे एक ही संस्कृति है या अनेक संस्कृतियां है? यहाँ वैरायटी है, वहां इतनी वैरायटी नहीं है इस बारे में। और संसाधन यहाँ बहुत है, यह अकाल मृत्यु अंदर है, ये पॉइंट नहीं चाहिए हमको, हमको बुराई करनी है उसकी वो क्लास बदल जाएगा फिर पिछली बार बहुत अच्छा बोला उसके बारे में, अभी थोड़ा उसको नीचे करना है तो उल्टा हो जाएगा फिर। हाँ, पद्मा पदम यहाँ भाग्यशाली है, वहां ये पता ही नहीं कि भाग्यशाली है, वो प्रलब्ध है। ये क्या है, बाबा ने कभी कहा है ना, सतयुग है ईश्वरीय जादू का प्रलब्ध, ये ईश्वरीय जादू है, ईश्वरीय जादू के प्रलब्ध की नगरी, और ये ईश्वरीय प्रलब्ध ईश्वरीय जादू की नगरी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वहां पर मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ क्या पढ़ते हो और वहां क्या पढ़ते हो, वहां इतिहास और भूगोल हद का, यहाँ बेहद का इतिहास पढ़ते हो, सृष्टि चक्र का इतिहास तुमको यहाँ पता चलता है। वहां पर भी नाटकशाला हो गई, यहाँ यहाँ ज्ञान होता है कि ये सारा संसार ही नाटकशाला है, जिसमें हम ही वो एक्टर है जो पार्ट बजा रही है। वहां यहाँ पर ज्ञान डांस है, वहां पर स्थूल डांस है, वहां पर भी गाते हो, यहाँ क्या गाते हो और वहां क्या गाते हो, वहां पर भी गीत होंगे प्रकृति से संबंधित, और यहाँ परमात्मा प्रेम के गीत है। देवताएं पूजा करते, हम पूजा नहीं करते, पूजा करते कि नहीं करते देवता, करते हैं, एक पूजा तो जरूर करते हैं। कौन सी पूजा करते हैं देवता है? पेट पूजा तो करते हैं। बाप वहां कुछ नहीं खाता पर यहां जरूर खाता है, वंडर। अभोक्ता होकर भी कुंती माता बाप यहां पर भी कुछ तो खाता है। हाँ, खुशबू तो वो एक समय था और ये एक समय है, इस संपूर्ण सृष्टि चक्र में ऐसा समय और कभी नहीं आएगा। इस समय का महत्व हमें पता रहे, समय और संकल्प, आगे बाबा ने पंजाब के लिए संकल्प के लिए भी कहा है, हलचल भी ना हो, व्यर्थ संकल्प भी बहुत बड़ा गिना जाएगा इधर। तो संगम युग की सारी प्राप्तियां हमारे आंखों के सामने हो, प्राप्तियों की लिस्ट, क्या क्या अधिकार परमात्मा ने दिए है वो लिस्ट, समान की लिस्ट। यहाँ समान मिलते हैं, वहां समान मिलता है, यहाँ पर वरदान मिलते हैं, वहां कोई वरदान नहीं मिलता। यहाँ तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो, वहां सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो, यहाँ सिद्धिदाता बनते हो, वहां सिद्धिदाता नहीं बनते। यहाँ सेवा का सब्जेक्ट है, वहां सेवा कोई है नहीं, इसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ युग है। वहां कोई ज्ञान ही नहीं है, कहा ना वहां नॉलेजफुल ब्लिसफुल पावरफुल अभी हो, वहां नहीं हो, जाने का संकल्प ही नहीं आएगा, वो प्रलब्ध अपने आप पहुंच जाएंगे। हाँ, और इसी की वो प्रलब्ध है, ये पुरुषार्थ वो प्रलब्ध। बाबा ने कहा दोनों बुद्धि में हो, तो अधिकार की लिस्ट, समान की लिस्ट, वरदान की लिस्ट, प्राप्तियों की लिस्ट, खजानों की लिस्ट, सब कुछ गुप्त है इधर। सजाओ की लिस्ट धर्मराज पूरी भी है, ये पर ये भी नहीं भूलना है, ये धर्मराज पूरी भी है, संगम युग भोगनाओं का युग भी है, सारे हिसाब किताब यहाँ चुकतू होते हैं, और ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होते हैं, बाहर वालों से चुकतू नहीं होगे, जो लंबे समय साथ साथ रहे हैं वही आएंगे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में वही लोग हैं, डिपार्टमेंट में सारे जन्म जन्म जो साथ रहे, जूनियर इंचार्ज सीनियर जो भी बने हैं वो सब आए हैं इधर, सारा हिसाब किताब चुकतू करने, इसके लिए नया हिसाब नहीं बनाना, जो है उसको चुकतू कर लो बस। तो बाबा ने आज लिस्ट गिना इतनी सारी, और भी बहुत सारे हैं, जितना चिंतन करोगे उतने और ज्यादा पॉइंट निकलेंगे। बस हमारी बुद्धि इसी में लगी रहे तो यहाँ का जो संसार का जो वातावरण है उससे हम मुक्त रहेंगे। उसके बाद बाबा ने, हम इसमें फिर आएंगे, इसके बाद बाबा ने किससे बात किया? पंजाब से बात की। क्या कहा पंजाब को? पानी और खेती। पानी मशहूर है, बाबा ने कहा नदिया, उनकी जो नदिया है वहीं बहती है, बाहर नहीं जाती, वो पर है कौरव गवर्नमेंट की, और पांडव गवर्नमेंट की नदिया सब जगह जाती है। पंजाब की बहनों की लिस्ट गिनाई थी सुशील भाई ने उस दिन, सब जगह जो फैली है। और क्या बताया पंजाब के लिए? क्या तुरंत दान महापुण्य, उसके पहले यहाँ इसकी कौन सी खूबी है? वो जो है वो खेती के लिए बिना अगर सीजन ना भी हो तो भी अनाज पैदा करता है, और यहाँ तो संगम युग का पूरा ही सीजन है, फुल सीजन, तो 12 मास के 12 फल। किस फल की? पंजाब में। हाँ वो आगे है, वो भी बोला है बाबा ने, अकाल तख्त की भी निशानी है। और यहाँ क्या बोला? अकाल तख्त नहीं, पानी और नदियों के बारे में बताओ पहले, नदियां और खेती। और क्या कहा नदियों के बारे में? कृषि प्रधान राज्य है पंजाब। और क्या कहा? साइंस के साधन और साइलेंस की शक्ति। साइंस से क्या क्या कर सकते हैं? वो साइंस से करते, तुम साइलेंस से नहीं कर सकते हो। तो 12 सीजन के 12 फल, किस फल की बात चल रही है? कौन से वो फल है? वीआईपी को लाने, मतलब वारिस, ये भी हो सकता है, माइक वो भी हो सकता है फल। यहाँ बहनों की बात ज्यादा चल रही है शायद, नदियां जो है ना, नदियां निकालने की बात चल रही है। तो और नहीं प्रत्यक्ष, ये बताओ फल बताओ पहले, और कौन कौन से फल है, किस फल की बात चल रही है? नदियां तो है और बहुत सारे फल है, सेवाओं में जो कुछ है वो सारे फल ही है। आप समान किस कितनों को बनाया, प्रोग्राम्स हो गए वहां पे, प्रदर्शनी हो गई, सेंटर हो गए, गीता पाठशाला हो गई, ये सारे फल ही है। कॉन्फ्रेंस, मेले, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, सब फल ही है। स्नेह मिलन, ये सब फल है। तो बाबा ने कहा साधना के द्वारा क्या करो, धरती को परिवर्तन करो, ये नवीनता लानी है। वो असंभव को संभव करते तो तुम ये करो, धरती को परिवर्तन कर दो। और आगे अमेरिका को भी बोला है चारों ओर फैल जाओ, जैसे 1000-2000 लोग बैठे हैं, पांच पांडव, उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सारी अमेरिका में फैल जाओ और जाल बिछाओ। कहा ना योग शक्ति का जाल बिछाओ। हाँ, दुखी आत्माएं, अभिलाषी आत्माएं, किसकी? खुशी की, शांति की, भटकती हुई आत्माएं जो है उनको दे दो दान। और पंजाब के लिए क्या कहा फिर आगे? तुरंत दान महापुण्य, अभी अभी। क्यों? माताओं के लिए, शक्तियों के लिए क्या कहा बाबा ने? शक्तियां क्या है? शक्तियां है गाइड, और पांडव है गार्ड, और बाबा है गॉड या बैकबोन। तो जैसे बैकबोन बनकर आगे रखता है वैसे तुम भी आगे रखो, नहीं तो विशेष दंडा खाएंगे। सादा दंडा नहीं, विशेष दंडा खाना पड़ेगा। हाँ, पांडवों को आगे, वो तो कहते ही है बाबा, ये विशेष यहाँ पर शक्तियों को आगे रखने की बात करिए। राशि मिलती है, तीनों की राशि मिलती है, गाइड की भी, गार्ड की भी और गॉड की भी। अगर आगे क्यों रखा बाबा ने, क्यों रखा? पहले से द्वापर से तो पीछे ही रही है ना, ये पुरुष प्रधान समाज था आज तक, जितने धर्म स्थापक हुए हैं सभी पुरुष हुए। शास्त्र जो भी लिखे गए किसने लिखे? पुरुषों ने लिखे। ग्लानी जो हुई है स्त्रियों की हुई है। इसके लिए भगवान जब आता है तो ज्ञान कलश माताओं के सिर पर रखता है। तो आगे आगे और पंजाब के लिए बात किया बाबा ने, क्या बात की? अकाल तख्त यादगार है। तो तुम सब कौन हो? अकाल तख्त नशीन आत्माएं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत अधिकारी। अधिकारी अर्थात जहां पर अधीनता नहीं, अधिकारी अर्थात जहां पर कमजोरी नहीं, कमजोरी समाप्त। दो तीन दिन से मुरलियां चल रही है ना, सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? कर्मेंद्रिया धोखे देती है। और कर्मेंद्रियों में भी कौन देता है? आंखें, जबान, जबान भी धोखा देती है बहुत। कर्मेंद्रिय जीत बनना, कर्मेंद्रियों को वश में करना, ये कार्य करना है। तो स्वराज्य अधिकारी साक्षी होकर कर्म करना, ये भी स्वराज्य अधिकार की परिभाषा दी है। स्वराज्य अधिकारी, अधिकार अर्थात जो वश में नहीं है, अधिकारी अर्थात जो वशीभूत नहीं है। ये नशा हमको तब रहेगा जब कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे, हम वो ना देखे जो देखना नहीं है, हम वो ना सुने जो सुनना नहीं है। अपने आप को बार बार कहा कि बाबा ने इस चीज के लिए मना की है, तो आत्मा में शक्ति भरेगी। जितना सूक्ष्म में श्रीमद का अंदर ही अंदर उल्लंघन होते रहता है, पावर कम होती है आत्मा की। हमें ये शक्तियां भरने का समय, अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर्स को भरना है। वो पावर तभी भरेगी जब अगर छोटी 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 भूल होते रही, हम देहवान में आते रहे, तो आत्मा कमजोर होगी। इसके लिए बाबा ने कहा योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करो, सारी कर्मेंद्रिया हमारे अधीन हो। अगर धोखा देती है तो क्या करो? उसके लिए भी कहा ना बाबा ने, चेकिंग करो कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देती है। चार्ट रखो, पोता मेल रखो, ये सब चीजें करते रहो। और सबसे ज्यादा आंख, आंख के तरफ ध्यान रखना है। आत्मिक दृष्टि की साधना करो बाबा ने कहा है। बार बार सबको ना स्त्री देखो ना पुरुष देखो, सबको क्या देखो? आत्मा। तो ये एक अपने आप में एक साधना है। कितने लोगों को हमने आत्मा देखा? जो भी सामने आए देह की तरफ दृष्टि ना जाए, केवल आत्मा को देखे। सभी आत्माएं और सबका हमें कल्याण करना है, श्रेष्ठ स्थिति में हम स्थित रहे। योग अर्थात केवल अमृत वेला या नुमाशाम का योग नहीं, बाबा ने कहा निरंतर। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है और आत्मिक दृष्टि हमारी बनी हुई है, तब भी हम योग में ही है। वो हर चीज जो हमको देह से ऊपर रखता है वो योग की ही अवस्था है, वो फरिश्ता स्थिति ही है। गहन चिंतन की अवस्था भी संकल्पों में जो रमन करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों में, वो देह भान से स्वतः ही ऊपर रहते हैं। तो निरंतर स्वयं को ज्ञान के चिंतन में लगा के रखना है, तो ही हम ऊपर रहेंगे और निरंतर योग का चार्ट हमारा बढ़ता रहे। तो कोई भी कर्मेंद्रिय अगर देती है तो बाबा ने क्या कहा उसके लिए? बुरी आदतों के लिए क्या कहा? स्वयं को फटकारो, स्वयं को सजा दो। कौन सी सजा देंगे स्वयं को? चुटकी काटने से तो बहुत कुछ नहीं हो गया, और कौन सी थोड़ी अच्छी पावरफुल सजा बताओ खुद के लिए? योग, मौन, मनन चिंतन, लिखना। अपने आप को होमवर्क दो कि आज ये मुरली है, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। मुरली में पॉइंट आया है स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी पर एक पेज लिखेंगे, 10 पॉइंट लिखेंगे, 25 पॉइंट लिखेंगे, ये सजा देनी है स्वयं को। रोज वो 10-15 मिनट, आधा मिनट, आधा घंटा योग करके उठ जाते, आज आधा घंटा बढ़ा देंगे, ये योग करना है। आज रोज ये सेवा नहीं करते वो सेवा करते, आज एक्स्ट्रा सेवा स्वयं को दे देंगे कि जब तक 10 ग्रुप को नहीं समझाएंगे सोएंगे नहीं, ऐसी सजा देनी है। वो भोजन वाली सजा मत देना, तो बस वो भोजन ही घूमते रहेगा बुद्धि में। अगर भोजन नहीं खाया तो बुद्धि में भोजन भोजन ही घूमते रहता है। वो भी अच्छी सजा है वैसे, परंतु नाश्ता नहीं किया तो बस नाश्ता ही घूमते रहेगा 1 बजे तक। तो स्वयं को फटकारो, अगर भूल होती है तो, और दूसरा बाबा को सुना दो, छिपा के नहीं रखना कुछ भी, जितना छिपाएंगे उतना वो बोझ रहेगा। बोझ मुक्त होने का समय है और बाप आया है सबके बोझ लेने के लिए, इसके लिए सब कुछ उसको सुना दो और हल्का हो जाओ, चाहे कुछ भी किया हो। उसके बाद में और क्या कहा पंजाब से, बाबा ने कहा पहले क्या कहते थे बाबा, संकल्प, संकल्प में आया तो चलेगा परंतु कर्म में नहीं आना चाहिए। कभी एक समय ऐसा था, साकार मूल्यों में इसी तरह से वाक्य आते हैं ना, कि वो कर्म में नहीं आना चाहिए परंतु अव्यक्त वाणिया, एक संकल्प को भी ढीला नहीं छोड़ना है, एक एक संकल्प को भी बहुत बड़ा, बड़ी जैसे भूल हो रही है उससे, बहुत कुछ गवा रहे हो एक एक संकल्प पर अटेंशन, बाबा कह रहे, क्योंकि अंतिम सेवा मनसा की होनी है, मनसा सेवा, मनसा सेवा से विश्व परिवर्तन होना है। इसके लिए हमारे मन में क्या चल रहा है, किस तरह के संकल्प आ रहे हैं, अपने ही संकल्पों को साक्षी होकर देखना और ये सोचना कि एक एक संकल्प हमको जैसे बाबा को भोग लगाना है, तो भोग लगाई हुई वस्तु कैसी होती है, शुद्ध होगी, पवित्र होगी, विकार का उसमें अंश ना हो, ना ही उसमें नकारात्मक भाव हो, हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ संकल्पों का भोग हम लगा रहे हैं जैसे बाबा को, ये सबसे बड़ा समर्पण है, सर्वश्रेष्ठ समर्पण यही है, संकल्पों को समर्पित करना। जो भी हम सोच रहे हैं उसमें जैसे कि सेवा समाये हुई हो, जो भी हम सोच रहे हैं जैसे उसमें अपवित्रता है ही नहीं, पवित्रता से परिपूर्ण वो संकल्प है, निस्वार्थ वो संकल्प है, उस संकल्प से किसी ना किसी का कल्याण होने वाला है, वो संकल्प ऐसा हो जिससे हमारी स्थिति ऊपर चली जाए, विकारों के अधीन नहीं, उसमें देह भान ना हो, देह का आकर्षण ना हो, देह का अहंकार ना हो, उस संकल्प में सारे सारा खेल, कर्मेंद्रिय जीत बनने का काम कहां करना है, संकल्पों के तल पर करना है, संकल्पों के स्तर पर करना है। केवल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो और मन को खुला छोड़ दो, इससे नहीं होगा, सारा खेल ही संकल्पों का है। क्या संकल्प आ रहे हैं अभी, संकल्पों को अगर श्रेष्ठ करना है तो ज्ञान में डुबोना पड़ेगा उसको, तो ये हो सकता है। केवल गए और मुरली पढ़ लिया और आ गए और सुन लिया, केवल इतने से नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा, डुबोना पड़ेगा अपने आप को, सागर में डुबोना पड़ेगा, सागर बनना पड़ेगा उसके जैसा, तो हो सकता है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों की हलचल, इसको भी साधारण नहीं समझो, संकल्पों को महान बना देना है। जैसे ये एक टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक्स तो हमने क्लासेस तो बहुत सुनी है परंतु वो केवल सुनी और भूल गए, स्वयं स्वयं की क्लास कराओ। एक मुरली में बाबा ने बताया आप किसको टीचर बनाओगे, स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो, गिरे हो तो खुद उठो, कोई उठाने वाला नहीं है, स्वयं स्वयं का टीचर बनना, स्वयं स्वयं को ही सिखाना, ये कार्य करना है अभी। और अपने आप को व्यर्थ, हमारे जीवन में व्यर्थ कहां कहां है, कौन सी वो एरिया है, 1, 2, 3, 4, 5 मुख्य 5 कौन कौन सी है वो निकालो और उससे मुक्त कैसे हो, उसका प्लानिंग करना है। क्योंकि जब तक हम व्यर्थ से मुक्त नहीं होंगे, विकारों को तो छोड़ दिया परंतु व्यर्थ समाया हुआ है, व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करना है। तो ये बात बाबा ने पंजाब से कही। उसके आगे कितनों से मिल रहा है बाबा, कितने भिन्न भिन्न ग्रुप बैठे हैं सामने, लंदन से मिले बाबा, लंदन से पूरी पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं बाबा, क्या समझो स्वयं को। बाबा ने पहले पूछा ये भूमि कौन सी है, होली लैंड, इस भूमि की स्मृति बाबा दिला रहे, कहां हो इस समय, केवल इतना भी याद रहे तो योग लग जाएगा, कहां हो इस समय, कहां हो, ये भूमि कौन सी है, मधुबन है, परमात्मा अवतरण भूमि है, और बहुत सारे नाम है, केवल नाम भी याद कर लो तो नशा चढ़ जाएगा, केवल कहां हम है इतना ही, योग को बाजू में रख के केवल इतना भी चिंतन कर लिए बाबा के कमरे में बैठकर कि मैं कहां बैठा हूं, ये भूमि कौन सी है, तो नशा चढ़ जाए, क्योंकि बुद्धि उसमें एकाग्र हो जाती। जैसे हम चिंतन करना आरंभ करते बुद्धि एकाग्र होना चालू हो जाती। कहां बैठे हैं हम? कहां बैठे हैं? परमात्मा अवतरण भूमि, परमात्मा मिलन भूमि, कर्मातीत भूमि और परमात्मा कर्म भूमि। ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि है ये और परमात्मा की कर्म भूमि है ये। मधुर भूमि, मनोरंजन भूमि, सच्चा सच्चा हरिद्वार, सच्ची सच्ची गौशाला और बेहद का एयरपोर्ट, मधुबन ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर, पांडव भवन, तीर्थ में तीर्थ, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ। कहां बैठे हैं हम? पांडव भवन में बैठे। ये पांडव भवन ही शांति वन भी तो है, ज्ञान सरोवर है ये, और क्या है ये? सच्चा सच्चा दिलवाड़ा, अचल घर और विश्व की शोकेस में हम हैं। ये गुरु शिखर भी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ शिखर, और हॉस्पिटल भी है ये, और लाइट हाउस है, व्हाइट हाउस है, कुंज भवन है, और क्या है ये? विशाल भवन भी है, विश्व परिवर्तन की भूमि है ये, और ओम शांति भवन भी है ये, और क्या है? विश्राम भवन भी है। आत्माएं आई है यहाँ विश्राम करने, बाबा ने कहा है तुम रिफ्रेश होने यहाँ आते हो, बादल आते हो और भर के जाते हैं। और कौन सी भूमि है? ध्रुव, कमल कुंज है ये। ये एक किला है, इसके अंदर विकर्म नहीं होते, बाहर जाते ही विकर्म चालू होते, बाहर जाते ही असुरक्षित वातावरण है। यहाँ सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है, कवर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ निरंतर योग चालू रहता है। एक ग्रुप आया, अभी वो ग्रुप गया कि दूसरा ग्रुप आएगा। यहाँ के वाइब्रेशंस पावरफुल है, दादियों की भूमि है, यहाँ दादियों ने तपस्या की है, ब्रह्मा ने तपस्या की है, मम्मा ने तपस्या की है, ऐसी ये भूमि है, इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन है ये। और कौन सी भूमि है ये? हाँ, गार्डन ऑफ अल्लाह, वो तो सतयुग है पर ये भी है प्रभु पसंद भूमि है ये। महायज्ञ, यज्ञ कुंड है ये, बाबा ने कहा ये यज्ञ कुंड है, बेहद का यज्ञ है ये। और क्या है? शीश महल है ये, बाबा ने कभी कहा है जब मधुबन से व्यर्थ समाप्त तो हो जाएगा तो मधुबन शीश महल जादू की नगरी बन जाएगी, विश्व का शोकेस। ये होली हंसों की दुनिया है और ज्ञान मान सरोवर, सच्ची सच्ची गौशाला, सच्चा सच्चा हरिद्वार, बेहद का एयरपोर्ट, बेहद का धोबी घाट। मूत पलीती कपड़ धोए और ओ टॉप पॉइंट, लाइट हाउस, माइट हाउस, ये सारे याद करो, जगदम्बा भवन, एक 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 जितने नाम दिए बिल्डिंग्स को वो सब यही है। सुखधाम, इंद्रप्रस्थ, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है ये विश्व के, वो सब कुछ ये है। शांति स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, पवित्रता का स्तंभ है, स्वदर्शन भवन है ये, स्व को देखने का भवन, ज्ञान विज्ञान भवन भी यही है, आनंद सरोवर, प्रेम सरोवर, शांति सरोवर, ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी है, ये लकी हाउस भी है। तो ये कौन सा भवन? साइलेंस भवन, और ये लकी हाउस, राज राज ऋषि भवन, ऋषि कुटिया है ये, विश्व कल्याणकारी भवन है ये। ये ग्लोबल हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर विश्व के जितने रोगी है उनका इलाज होता है मुफ्त में, बड़े बड़े बीमारियां जो है उनका इलाज यहाँ होता है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है, कॉलेज है, और बेहद की फैक्ट्री है। यहाँ पे एंट्री करते लीडर निकलते हैं, या मनुष्य जाते हैं और देवता निकलते हैं बाहर, ऐसी फैक्ट्री है ये, मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पर। और शिवालय, शिव का मंदिर है ये, शिवालय है, ज्योतिर्लिंग जितने हैं संसार में ये सर्वश्रेष्ठ है, सच्चा सच्चा शिवालय, सच्ची सच्ची गौशाला, सच्चा सच्चा हरिद्वार, सच्चा सच्चा तीर्थ, हाँ कैलाश पर्वत बरबर है ब्राह्मणों के जितने उत्तर है सभी राइट है। रूहानी ब्यूटी पार्लर है ये, विश्वकर्मा द्वारा निर्माण निर्मित ये भूमि है, द्वारका सच्ची सच्ची द्वारका ये है, इंद्रप्रस्थ देवता और साकार का ईश्वरीय घर, वरदानी भूमि है ये, विश्व कल्याण की भूमि है ये, बेहद की भट्टी है ये, परिवर्तन भूमि है, विश्व की विश्व को परिवर्तन करने वाली ये भूमि है। इतना भी याद रहे तो क्या हो जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी ऊपर। हाँ ईट पक्के हो रहे ना, हो गए तो बाबा ने कहा कहाँ हो, होली लैंड की सदा स्मृति रहती है कि जैसे होली लैंड है वैसी होली स्टेज भी होनी चाहिए फिर तुम्हारी, स्वयं को परम पवित्र आत्मा अनुभव करते हो, क्या होना चाहिए तुमको, लाइट का ताज क्राउन जिसके सामने विश्व की आत्माएं नमस्कार करेगी। अभी भी कर रहे और क्या है ये, और क्या कहा यहाँ पर बाबा ने, साहबजादे और साहबजादी बिना ताज के क्या कहेंगे उनको, हो नहीं सकता ऐसा। और क्या कहा बंजी, सच्चा सच्चा धोबी घाट, होली मुरली धर, मुरली धर की भूमि, सच्चा सच्चा मधुबन, मधुबन वृंदावन गोकुल मथुरा द्वारका काशी, सच्ची सच्ची काशी तो यही है, जितने तीर्थ के नाम है वो सब यहाँ है। अमरनाथ की अमरपुरी, एक रीति से अमरपुरी भी है क्योंकि अमरनाथ यहाँ आया है, और रूहानी ने भूमि भूमि दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन शिव बाबा का प्यारा गीत है ना, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा, तो ऐसी ये भूमि पर हम बैठे हैं। लड़ाई नीलम परिया वही ज्ञान मान सरोवर जिसको कह सकते हैं हम, फरिश्तों की दुनिया, दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन शिव बाबा का प्यारा, गीत में ऐसे ही है ना, दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन शिव बाबा का प्यारा, चैतन्य देलवाड़ा अचलगढ़ देलवाड़ा जो कुछ आबू में है वो सब यहाँ ही है, तो ऐसी भूमि पर हम है, ये है होली लैंड, तो हमारी स्टेज भी होली चाहिए, इतनी प्यूरिटी हमको अपने अंदर भरनी है, सारा आधार ही प्यूरिटी है। अब तक जो भी झगड़े हुए, जो भी विरोध हुआ संसार से, किस लिए हुआ, एक ही बात के लिए हुआ है बस, ये पवित्रता। बाबा आए हैं केवल एक ही कार्य करने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए, तो उसमें कोई कमजोर ना हो, चाहे किसी में कला नहीं है, कोई विशेषता नहीं है या कुछ नहीं है चलेगा, परंतु इस धारणा में कोई ढीला ना हो, ये सबसे ऊंची धारणा है। संसार जिसे असंभव समझता है वो सबने यहां कर दिखाया है। फिर क्या कहा बाबा ने, माया के लिए यहां पर कहा है जो हमने बोल दिया, फिर उसके बाद में अमेरिका से क्या कहा बाबा ने, क्या है सब पांडव, पांडव ने क्या किया, क्यों गायन है उनका, विजय, किसके सामने विजय, अक्षयोनी सेना, पांडव महाभारत में गायन है अक्षयोनी सेना, उसका बहुत बड़ा वर्णन भी है कितनी होती है अक्षयोनी सेना, कितने हजार हाथी और कितने हजार घोड़े और कितने हजार घोड़सवार, वो सब मिलके एक अक्षयोनी बनता है, तो हम एक तरफ और संसार में अक्षयोनी सेना, जीत हमारी है क्योंकि पांडव पति हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए माया के कोई भी वार हो, परंतु जीत अंततः हमारी ही है। तो पांच पांडव एक तरफ और सेना एक तरफ, जीत फिर भी धरी है, तो ये जीत का भी नशा चाहिए। बाबा ने फिर जाल डालने को कहा ना, फैल जाओ और जाल डालो, कौन सा जाल, योग की शक्ति का जाल, क्योंकि वो भटक रही आत्मा है, सुख की, सुखुशी की और शांति की अभिलाषी है, तो उनको वो दे दो, जिसको जो चाहिए वो दे दो। महादानी भूमि है ये, यहां बैठकर दान कर सकते हो। भागीरथ ब्रह्मा की चरित्र भूमि है, ब्रह्मा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, कर्मातीत भूमि। ये हो गया। फिर आगे गयाना, गयाना से क्या कर रहे बाबा, क्या कहा बाबा ने, सर्विसेबल रत्नों की बात कर रहे हैं। सर्विस तुम्हारे अंदर कैसी समाई हो, जैसे सर्विस के संस्कार, सेवा के संस्कार, संस्कार कहा ना, कैसे समाये हो तुम्हारे अंदर, जैसे शरीर में खून, और खून निकल जाए तो बेकार, और सेवा निकल जाए तो किसी काम के नहीं, सेवा निकल जाए तो जीते जी जैसे मर गए। तो बाबा ने कहा सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सेवा ब्राह्मण जीवन का और क्या क्या है, श्वास है, प्राण है, धड़कन है, अंग है, और जैसे बाकी अंग है ना, ये अंग बन जाए, एक वरदान आया था ना अभी, और क्या है सेवा, सेवा कमाई का साधन है, उड़ती कला का साधन है, दुआओं का साधन है, खुशी का साधन, खुशी तो तुरंत मिलती है सेवा करते ही, आगे बढ़ने का साधन है, उन्नति का साधन है, उड़ती कला का साधन है, व्यर्थ से मुक्त होने का साधन है। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे, व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, बजाय इसके कि झगड़ते रहो बाबा के कमरे में बैठकर योग लगाते लगाते, उससे अगर मुक्त होना है तो पहले सेवा, सेवाएं से दुआएं मिलेगी, सेवाएं से खुशी मिलेगी, फिर स्वतः ही योग लगेगा। सेवा ही जीवन है, प्रारब्ध का आधार भी, उच्च पद का आधार भी सेवा ही है। जो दिल, जो सेवा सर्विसेबल बच्चे है वो बाप के दिल पर चढ़े हुए, जो सर्विसेबल रत्न है वो आज क्या कहा, नैनों में जैसे तारा होता है, वैसे सिकिलते बच्चे भी बाप के नैनों में समाये हुए हैं। तो परमात्मा प्यारा अगर बनना है तो जो उसकी सेवा है वो करना पड़ेगा। बाप बच्चे, बच्चे बाबा से कहते कि बाप, बच्चे कहते कि बाप हमारा सुनते नहीं है, तो बाप क्या कहते, तुम मेरा कहां सुनते हो, जब तुम मेरा सुनोगे तो मैं तुम्हारा सुनूंगा। उसका सुनना अर्थात तो उसकी श्रीमत पर चलना, जो उसने कहा है वो करना। उसके बाद में बाबा किससे मिले, लास्ट ग्रुप जर्मनी। जर्मनी से पहले तो सेवा के बारे में बात कर रहे बाबा की, जिनकी अभी सेवा करोगे, जो संपर्क में आत्मा आ रही है वो फिर तुम्हारी सेवा करेंगे। एटॉमिक एनर्जी का जैसे अभी कह रहे, ये ग्रुप छोटा सा ग्रुप होगा, जिसमें सुबह चंद्रशेखर भाई बता रहे थे ना, गोलू भाई और ये सब लोग मिल रहे थे बाबा से, जबकि सोलार का थोड़ा चालू था, तो उस समय बाबा बात कर रहे हैं कि अभी जिनकी सेवा करोगे वो फिर तुम्हारी सेवा करेंगे, जो अभी संपर्क में आएंगे वो जब तुम मालिक बनोगे तब तुम्हारी वो सेवा करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात नीचे बोली है वो है स्वदर्शन चक्र के बारे में। क्या कहा स्वदर्शन चक्र के बारे में, स्वदर्शन चक्र अर्थात वो सदा चढ़ती कला का है, उसमें चढ़ती कला फिर गिरती कला, ये जो संस्कार है बाबा ने कहा ये एक कमजोरी है, ये कमजोरी का एक बीज है, तो बीज को क्या कर दो, जला दो। अगर जले हुए बीज अगर खेत में डाल दिए तो क्या होगा, निकलेगी क्या फसल, नहीं निकलेगी, वही एकमात्र माध्यम है। नहीं तो कैसा भी बीज हो, वो बीज इतना शक्तिशाली होता है कि चट्टान भी रख दो तो चट्टान को तोड़कर निकलता है बाहर। अगर बीज को भून दो और फिर डालो फिर देखो क्या होता है, कुछ नहीं निकलेगा। तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ बीज है, बाबा ने यहां बीज कह रहे संस्कारों का जो बीज है, कमजोरियों के संस्कार का बीज। कौन से कमजोरी, वो भी कहा कि जो ऊपर नीचे स्थिति होती है, ये एक बीज है, बीती सो बीती। तो ये जो बीज है इसको नष्ट करना है, वो होगा केवल कैसे, याद की अगन, योग की अगन की अग्नि, कमजोरियों की, कमजोरियों की लिस्ट भी होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या क्या कमजोरी है, कौन सी वो बाधा है जो हमें योगी बनने नहीं देती, उसको ढूंढना है। अपनी ही कमजोरियों का बीज आंखों के सामने देखना और उसको योग की शक्ति से भस्म करो, जैसे कि किरणें भ्रुकुटी से निकल रही है और वो बीज नष्ट हो रहा है। इस योग का प्रयोग हम करेंगे। इस मुरली से हम कुछ होमवर्क निकालेंगे। सबसे पहला पीछे से अगर शुरुआत करते हैं तो बाबा ने कहा कमजोरी के बीज को क्या कर दो, जला दो। हर एक आत्मा में ऐसी एक कोई कमजोरी रहती है जो बहुत लंबे समय से चल रही है और शायद वही उसके उन्नति के मार्ग में बाधा है। सब कुछ कर लिया, हर प्रकार से उस कमजोरी को जीतने की कोशिश की, परंतु वो गई नहीं अभी तक। ऐसी वो कौन सी पॉइंट है उसको खाली हमको पकड़ना है। पहले तो क्या हम करें कि हमको पता चल जाए कि ये वो कमजोरी है, और इसी के वजह से यही एक कारण है जो हमारे उन्नति के मार्ग में बाधा है। पहले तो उसको पकड़ना, एक। दूसरा, उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखने से भी वो और ज्यादा स्पष्ट हो, क्योंकि हमारी कमजोरियों का ज्ञान हमें ही नहीं है। और जब हम दूसरों से सुनते हैं तो क्रोध आता है, फिर हम नहीं सुनना चाहते। तो क्या है वो? वो बीज है, और उसको रोज योग में इमर्ज करना और उसको भस्म करना, ये कार्य डेली करना है। तो एक तो ये कहा लास्ट ग्रुप में, कमजोरियों को नष्ट करना। दूसरा, सर्विस के लिए बाबा ने कहा, जो बाबा परिभाषा दे रहे हैं कि सर्विस हमारे रग रग में समा जाए, कि हमारी वो स्टेज है। तो हर तरह से जो बाबा ने चार प्रकार की सेवाएं बताई है, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, स्व सेवा, ये जो भी सेवाएं है, निरंतर सेवा करते रहना। और सबसे बड़ी सेवा है खुद की सेवा। बाबा ने अभी मूवी मुरलियों में कहा है ना, स्वयं पर रहम करो। रहम किस पर किया जाता है? जो थोड़ा कमजोर है, दयनीय अवस्था में, उस पर बाबा ने कहा तुम स्वयं पर रहम करो। तो स्वयं पर रहम करना और स्वयं को अपनी कमजोरी से मुक्त करना, दूसरा कार्य। तीसरा, प्यूरिटी के लिए बाबा ने कहा है, कहां कहां ब्रह्मचर्य खंडित होता है। मुरली अभी चली है एक हफ्ते में, बहुत सारे पॉइंट्स आई है, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। कहां पर इंद्रिय चलायमान होती है, क्या उसमें परिवर्तन किया जाए, देह का जो आकर्षण है उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, इसके ऊपर जितना चिंतन करेंगे उतनी स्थिति शक्तिशाली होगी। तो प्यूरिटी के ऊपर चिंतन करना है। और पंजाब के लिए बाबा ने जो कहा है कि कहां कहां व्यर्थ संकल्प आते हैं उसकी लिस्ट बनाओ, चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो। तो ये जो चेकिंग का काम है हर दिन चालू रहे, तो ये बाबा ने आज की मुरली में कहा। और हमारे पास 5 मिनट है, एक हफ्ते में कोई और पावरफुल पॉइंट हो तो कोई बता दे, साकार मुरलियों में जो बाबा ने कहा। और रोज की जो मुरली है उसको बार बार रिवाइज करते रहे, तो बुद्धि में ज्ञान रहेगा। और बुद्धि में जब ज्ञान रहता है तो माया वार नहीं करती है। माया का वार तभी होता है जब हम ज्ञान की विस्मृति में आ जाते हैं। कोई पॉइंट माताओं की तरफ से? अदृश्य है यहाँ पर सब कुछ, कुछ भी दिखता ही नहीं देता। यहाँ ना ज्ञान दिखता है, ना योग दिखता है, ना तपस्या दिखती है, ना पढ़ाने वाला, ना पढ़ने वाला, सब कुछ अदृश्य का खेल है इधर। ना तो प्रारब्ध खुशी, परंतु उसका जो प्रभाव है वो तो दिखता है। भले वो झूला जो है अतीन्द्रिय सुख का, वो अदृश्य है, दिखता नहीं कैसे कहाँ झूल हो रहा है, परंतु उसका प्रभाव जो चेहरे से वो तो दिखता है। अदृश्य की बात बाबा ने कही थी। संकल्प से, मनसा से सेवा करनी। बाबा हर शब्द में सदा शब्द ऐड करते हैं, सदा और डबल, ये बाबा के सबसे फेवरेट शब्द है। हर चीज में डबल, दादी ने कहा, दादी जानकी ने कहा, एक दूसरे से सावधान होकर, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। तो साधनों में भी फंसना नहीं है, मोबाइल टीवी इंटरनेट तीन मुख्य माया है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक माया है। कैसे? टीवी, टीवी से तो चलो, पर इंटरनेट और मोबाइल, ये दो चीजें ऐसी है कि जिसमें आत्माएं फंस जाती है। खिलौने की अंतिम चाल है ये रावण की, सबसे लास्ट, जब उसका राज्य जाने वाला है तो सबके जेब में उसने डाल दिया, अब फंस गए, बस उसके सारी चाल असफल हो गई। ये लोग सिनेमा थिएटर में नहीं जाते तो क्या करेंगे, टीवी लाया, चलो टीवी नहीं देखते तो हाथ में मोबाइल थमा दिया सबके, और उसमें भी फिर इंटरनेट डाल दिया। ये सबसे बड़ी माया है, परंतु सबसे बड़ा सेवा का साधन भी बन सकता है। इसके लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा समय उसमें तो नहीं जा रहा है, उसकी भी चेकिंग, कहां समय जा रहा है, हम क्या चिंतन कर रहे हैं दिन भर, बस वही हमारा चरित्र है। जब हमें कोई देख नहीं रहा है और हम वो जो कर रहे हैं वो हमारा चरित्र है, क्या बोल रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं, वो नहीं। एकांत में व्यक्ति क्या करता है, वही वो खुद प्रत्यक्ष रियल वो वही है। तो स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना ये लक्ष्य रखना है, स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से भरना ये लक्ष्य रखना है, समय कौन सा है वो लक्ष्य रखना है, समय का बार बार चिंतन और समय संकल्प, संकल्प वेस्ट कहां कहां जा रहे हैं, कौन सी वो बातें आती है जिससे अंदर मन में उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक्साइटमेंट होती है, उसको समाप्त करो। वो कौन सी बातें आती है कि जिसमें मन में घृणा नफरत विरोध उत्पन्न होता है, वो कौन सी बातें हैं, उनको पहले समझना और फिर धीरे धीरे उससे मुक्त होना। जब तक उसको समझोगे नहीं मुक्त नहीं हुआ जा सकता। पहला फर्स्ट स्टेप तो वो क्या है, जागृति, जागृति ही मुक्ति बन जाएगी, केवल जागृति, जागना, अमूर्छा की जो अवस्था है वही आपको मुक्त करा देगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।